श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक संख्या 9 दिनांक 13 जुलाई 2015 स्पीकर इज ग्रेस कमल लोचन प्रभु।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गोवर्धन लीला का वर्णन हो रहा है। गोवर्धन लीला का शुरुआत में जैसे हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण दूर से उन्होंने देखा, उनके पिताजी और अन्य गोप गोकुल के अन्य गोप लोग यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। यज्ञ की तैयारी करते हुए जब देखा कृष्ण आके उनसे कुछ प्रश्न पूछे, कृष्ण के मन में था कि मैं कैसे इन लोगों को इस प्रकार की जो कर्मकांड है उससे मुक्त कराऊं। इसके लिए कृष्ण ने कुछ प्रश्न पूछे, इन प्रश्नों का जवाब नंद महाराज दे रहे हैं। तो कृष्ण कुल मिला के 6 प्रश्न पूछे थे। तीसरे श्लोक में उन्होंने पूछा, सबसे पहला प्रश्न पूछा कि हे पिताजी मुझे बताइए यज्ञ ये क्या कर रहे हो आप। कथिताम में पितक कोयम संभव संभ्रमो वा उपागतः, पहला क्या कर रहे हो आप पहले बताइए। दूसरा प्रश्न था किम फलम, इससे क्या फल प्राप्त होगा ये बताओ। तीसरा कस्य उद्देशः, क्या उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। एतद्रुहि महाकामो मह्यम सुषुरेश्वरे पितः नहीं गोपयताम हे साधु नामे। 3 प्रश्न पूछने के बाद भी नंद महाराज ने ध्यान नहीं दिया, बच्चा है कुछ भी बोलता रहता है। तो नंद महाराज को वापस कृष्ण ने कहा कि नहीं गोपयताम हे साधु नाम, साधु नाम साधु लोग होते हैं, नहीं गोपयताम कोई भी चीज को छुपा के नहीं रखते हैं। और कृत्यम सर्वात्मनम इहा, क्यों सारे लोगों को समान दृष्टिकोण से देखते, अभी क्या देखते हो बच्चा बूढ़ा ये सब चीजें भूल जाओ, अभी आप साधु हो। साधु लोग जो है उनका स्वभाव होता है सबको देखता एक समान देखना, इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं बच्चा हूं एक बड़ा हूं, ये सब चीजें मत देखो, मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब दो। अस्य अस्वपरा दृष्टम अमितोत्कृष्टम विदिशतम, देखिए साधु लोग होते हैं वो दुश्मनों को भी अपना मानते हैं, ये साधु का स्वभाव होता है। उनके प्रति जो बुरा करता है उनको भी अपना मानता है। उन लोगों की बात क्या कहना, मैं तो आपका मित्र भी नहीं हूं, मित्र से और आगे हूं, मैं आपका बंधु हूं। इसलिए उदासीनो वत गजह आत्मनो वत सुहृत उच्चते, तो उदासीनो वत जो उदासीन होता है वो कौन होता है, उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, वो दुश्मन का मित्र होता है। लेकिन मैं जो हूं वो उस प्रकार नहीं, मैं आपका पुत्र हूं, एक पुत्र होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इन सब चीजों का जवाब दीजिए। आगे उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा ज्ञात्वा ज्ञात्व च कर्माणि, तीसरा प्रश्न ज्ञात्वा ज्ञात्व कर्माणि, आप जो ये कार्य कर रहे हो क्या जान के कर रहे हो, क्यों करना चाहिए। योयम अनुतिष्ठति, आप ये जो कार्य कर रहे हो ये इस कार्य का फल नहीं, क्यों करना चाहिए अगर नहीं जानते हो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूं आप इस कार्य के पीछे रहस्य जानते हो कि नहीं। बाद में उन्होंने कहा तत्र तावत क्रिया योगो भवताम किम विचारिणः, क्या आपने विचार किया ये क्रिया योग है क्या, कर्मकांड है क्या, अथवा लौकिकम तम वे पृच्छतः साधु बन्यताम, तो आप ये जो कार्य क्या शास्त्रोक्त चीज है, क्रिया योग मतलब कर्मकांड है, या ये केवल एक औपचारिकता के मात्र एक लौकिक चीज है, ये बताइए। इस प्रकार इसके 6 प्रश्न थे। यानी 8वां श्लोक से नंद महाराज ने सबसे पहले बताया, देखो मुझे शास्त्र नहीं मालूम, मेरे पूर्वज करते थे, हमारे पूर्वज करते थे, उनका पूर्वज करते थे, उनका पूर्वज करते थे, इसलिए उन्होंने कहा प्रजायन्तो भगवान इंद्रो मेघ तस्याम मारुतस्य कि ते अभि वर्षयन्ति भूतानाम प्रीणयन जीवनम प्रजा। इंद्र ने कहा, नंद महाराज ने कहा, हे मेरे पुत्र सुनो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो, भगवान इंद्र जो है हमको वर्षा प्रदान करते हैं, और तस्यात्मा मारुतः मूर्तयः, तस्यात्मा मूर्तयः मेघास तस्यात्मा मूर्तयः, मेघ मतलब उनके बादल होते हैं, आत्ममूर्तयः मतलब उनके इंद्र के मूर्तिमान स्वरूप है या इंद्र के प्रतिनिधि है। ते भी वर्षन्ति भूतानाम, उनकी वर्षा की वजह से प्रीणाम जीवनम पयः, तो सारे जितने भी जीव है उनको दूध प्राप्त होता है, उनको जल प्राप्त होता है इत्यादि उन्होंने कहा। यानी दूसरे शब्दों में नंद महाराज ने सबसे पहले कहा हम इंद्र का पूजा कर रहे हैं। कृष्ण का पहला प्रश्न था ना, आप क्या कर रहे हो, हम इंद्र का पूजा। तब उनका प्रश्न क्यों पूजा कर रहे हो, तो पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि इंद्र हमको बारिश देते हैं और बारिश की वजह से सारे घास फूस उगता है, उसकी वजह से गाय उसको खाती है, उससे हमको दूध मिलता है, हमारा जीवन इसी की वजह से चलता है, खेती बाड़ी गाय सब जीवन जो है इंद्र की बारिश की वजह से होता है, इसलिए इंद्र को पूजा कर रहे हैं। ये दूसरा प्रश्न जवाब दिया। अभी तीसरा प्रश्न ये था, आप कैसे पूजा कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग इट, उसका जवाब दे रहे हैं। तम तात वयम अन्येचा, ऐसा नहीं कि फिर मैं ही कर रहा हूं कृष्ण, अन्येचा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंद्र की पूजा करते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं गलत कर रहा हूं, मगर मैं गलत है तो सभी लोग गलत हैं, और खास करके कृष्ण, इतना प्रेम करता हूं तुमसे, तुम हमारे लिए इतने प्यारे हो कि हम ये समझते हैं इंद्र की कृपा से तुम भी प्राप्त हुए मुझे। तो नंद महाराज इंद्र के प्रति इतना स्नेह था उनका, उनका ऐसा भाव था कि इंद्र को हमने इतने सालों से पूजा किया, इसकी वजह से केवल बारिश ही नहीं आया, हे कृष्ण तुम भी उनकी कृपा से हमको प्राप्त हुए हो। ये बात सही है, कृष्ण स्वयं इंद्र को शिक्षा देने आए हैं। और दूसरी बात, देवादि देव है इंद्र और उनकी भी देव है कृष्ण, इस बात को नंद महाराज भूल गए, वात्सल्य की प्रेम भूल गए, इसलिए कहते हैं तम ताता। ताता मतलब क्या है, बड़े प्रेम से संबोधित करें, माय डियर सन ताता। ये ताता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, जहां नंद महाराज कृष्ण को ताता माय डियर सन, मेरे प्रिय पुत्र, देखो इंद्र के द्वारा केवल अनेकों अनेकों चीजों की प्राप्ति नहीं, तुम्हारे भी प्राप्ति इंद्र की कृपा से हमको हुआ है, इसलिए अगर तुम सोचोगे इंद्र का पूजा मत करो, ये ठीक नहीं, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम आके बोल रहे हो इंद्र का पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ गए, नंद महाराज समझ गए कि कृष्ण का उद्देश्य क्या है सब चीजें बोलने में, क्योंकि इंद्र का पूजा नहीं करना चाहिए करके कृष्ण बोलने वाले हैं, ये बात नंद महाराज पहले समझ चुके हैं, इसलिए इस बात को बच्चे को सांत्वना प्रदान करने के लिए कृष्ण ये मत सोचो केवल मुझे ही इंद्र का सेवा करना है, यज्ञ करना है, तुमको भी उसमें भाग लेना है, जो हमारा आनंद का कारण तुम हो और इंद्र की कृपा से तुम मुझे प्राप्त हुए, अगर मैं इंद्र का पूजा नहीं करूंगा ये समझना कि आपके प्रति या तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उसमें कुछ कमी हुआ। इसे बच्चे लोग को माता पिता समझाते हैं ना, बेटा तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, बता एक बच्चा एक जाना चाहता है ये नहीं करना है वो नहीं करना है ऐसा क्यों करना है उधर नहीं जाना है, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं बच्चे को? बच्चे को प्रेम से बोलते हैं, बेटा आओ बैठो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। तब वो बच्चा जो है हाँ महाराज मेरे लिए कर रहे हो ना, ठीक है। तब दूसरी तरीके से नंद महाराज बड़ी युक्ति लगाया कृष्ण को शांत करने के लिए। तुमने कहा तम ताथा वयम मन्ये चा, केवल मैं ही नहीं हूं बाकी सब लोग भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वारमुचाम पतिमीश्वरम, वारमुचाम पतिमीश्वरम। वारमुचाम का अर्थ है बादल, बादल के जो पति है या ईश्वर है, द लॉर्ड एंड द मास्टर ऑफ क्लाउड्स, इंद्र को पूजा करना। इसके पीछे केवल इंद्र हमको दे रहे, बारिश दे रहे, गाय और गाय को दूध, गाय को घास मिलता है, हमको धान मिलता है, वही कारण नहीं है। अब बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं और इंद्र की कृपा से तुम प्राप्त हुए हो, इसलिए ये समझो कि इंद्र की पूजा करने में हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम की वजह से इंद्र की पूजा कर रहे हो। अस्तित्व प्रेम इंद्र से नहीं है, इंद्र तुमसे प्रेम है, लेकिन इंद्र की कृपा से तुम मिले हो इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम इसकी पूजा कर रहे हैं। बाद में प्रश्न आया तो इसलिए ये हम जो कार्य कर रहे हैं इसको विरोध मत करना। बाद में द्रव्यैस्तद् रेतसा सिद्धेर, कैसे पूजा कर रहे हैं? द्रव्यैस्तद् रेतसा सिद्धेर, द्रव्यैः, जो द्रव्य हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये सब पूजा के लिए, हम कहीं और से नहीं लाए हैं। ये सारे जो द्रव्य हैं, सारे जो चीजें हमको जो प्राप्त हुआ है, इंद्र के द्वारा ही प्राप्त हुआ है और इंद्र को ही अर्पण कर रहे हैं। जैसे हम गंगा में जाते हैं, गंगा का जल को ही लेते हैं और गंगा को अर्पण करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या 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 फायदा इसमें? तो पाश्चात्य देश के लोग, एक अंग्रेज था, उन्होंने एक लेख लिखा, ये हिंदू लोग करते क्या है, महामूर्ख लोग हैं। गंगा में नहाने के लिए जाते हैं और गंगा का जल को लेते गंगा को अर्पण करते हैं, और दूसरी बात उनसे पूछो ये क्या कर रहे हो, बोलते सूर्य को अर्पण कर रहे हैं। ये मूर्ख लोग हैं, ये सुपरस्टिशियस लोग हैं, इनका कोई बुद्धि नहीं है, ऐसे उनका मंतव्य था। किताब बहुत साल पहले पढ़ा था, सुपरस्टिशंस इन हिंदू रिलीजन, उसमें सबसे पहले ये गंगा का स्थान था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गो टू गंगा एंड टेक द वाटर एंड ऑफर, लेट इट फ्लो, उनको बहने दो। और दूसरी बात है, कुछ से पूछो तो बोलते कि मैं सूर्य को अर्पण कर रहा हूं। तो ये इंद्र के ही वस्तुओं को हम इंद्र को अर्पण कर रहे हैं। द्रव्यैस्त त्रेतसा सिद्धेर यजन्ते क्रतुभि नराः, ये सारे जितने लोग हैं क्या करते हैं? इंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ चीजों को इंद्र को अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के द्वारा दो चीज होता है, एक अहंकार का नाश होता है, दूसरा जो है शुद्धिकरण होता है। यज्ञ के द्वारा दो चीजें हैं, एक अहंकार का नाश, दूसरा है शुद्धिकरण। अहंकार का नाश का अर्थ क्या है? मेन सिद्धांतिक विषय है इसमें, इंद्र के वस्तुओं को इंद्र को अर्पण करना, भगवान के वस्तुओं को भगवान को अर्पण करना, ये यज्ञ कहा गया है। यज्ञ कोई दूसरा चीज नहीं होता है, यज्ञ मतलब क्या है? भगवान का वस्तु को भगवान को अर्पण करना, यही यज्ञ है। जैसे कभी पिताजी जो है पुत्र को 1000 रुपए देते हैं, पिकनिक पे जा रहा है, 1000 रुपए लेके गया, पूरा पिकनिक मनाया, आते समय पिताजी के लिए 10 रुपए का पेन लेके आया और पिताजी बोलता है मैं गिफ्ट देता हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ। पिताजी पेन लेके बड़ा खुश हो जाते हैं, वाह मेरा पुत्र देखो कितना अच्छा है, मेरे लिए गिफ्ट लाया। लेकिन पैसा किसका था? पिताजी का ही पैसा था, लेकिन पूरा 990 रुपीज, 990 रुपये खर्चा कर दिया, उसमें खाली 10 रुपये जो बचा था ना, वो भी पता नहीं जबरदस्ती बचाया होगा, जो भी हो, वो 10 रुपये का जो पेन देने से पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। अगर खाली 10 रुपये का पेन देने से पिताजी खुश हो जाते हैं, अब देखो अगर आप 500 रुपये का पेन दोगे तो कितना खुश हो जाएंगे, अगर सर्वस्व अर्पण करोगे तो कितना खुश हो जाएंगे। तो अर्पण करने में इतना शक्ति है कि भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान की प्रसन्नता के द्वारा हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है। किसका शुद्धिकरण होता है? आसक्ति का शुद्धिकरण होता है। इस संसार में अनेक वस्तुओं को हम अपना मान के बैठे हैं, ये मेरा करके मान के मैं बैठा हूं, इस वस्तु को मेरा मान के बैठा हूं, इसलिए क्या होता है, ये वस्तु जो है वो हमको पाप का कारण, पाप कार्य करने प्रवृत्त करता है। पाप मतलब क्या है, दूसरे व्यक्ति का वस्तु को अपना करके मानना, ये चोरी एक पाप है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण का है, हर एक चीज कृष्ण का, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम् जगन्त्येतेन मुञ्जेताम् मार्गदर्शकस्य सत्त्वम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, हर चीज भगवान का है। ये जमीन भगवान का है क्योंकि आपके आने से पहले भी जमीन था, आपके जाने के बाद भी जमीन रहेगा, ठीक है नहीं? तो तब तक आप क्या कर रहे हो, जमीन को देखभाल कर रहे हो, वॉचमैन ही कर रहे हो, उतना ही सत्य है। लेकिन जो वॉचमैन सोचने लग जाए कि जमीन मेरा है और ये हंगामा करने लग जाएगी मेरा है मैं छोड़ूंगा नहीं, तो इससे बढ़कर मूर्खता क्या हो सकती है। जो हमारे परिवार वाले हैं, 100 साल पहले आपसे मिलने से पहले भी थे और 100 साल के बाद भी रहेंगे, और कुछ समय के लिए सोचोगे मेरे हैं, इससे बढ़कर कोई मूर्खता नहीं है। तो इसको जो आसक्ति हो जाती है इन वस्तुओं के प्रति, इस आसक्ति का शुद्धिकरण करने के लिए क्या करना होगा, कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा, इदम केशवा इदम नामवा, यज्ञ में यही शब्द यही मंत्र है। भले नाम अनेकों अनेकों हो सकते हैं, अलग अलग आहुति अलग अलग देवताओं को या अलग अलग भगवान के स्वरूपों को आचार्यों को अर्पण किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में अंत में ये मंत्र आता है, क्या है, इदम ये चीज जो है भगवान का है, इदम ये चीज जो है मेरा नहीं है, यही यज्ञ है। बार बार क्यों बोला जाता है, प्रत्येक मंत्र में इदम नाममा, इदम नाममा, ये जो चीज है मेरा नहीं है, ये किसका है, भगवान का है, मेरा नहीं है, ये 100-100 बार, इतनी आहुति, 1000 आहुति होता है 1000 बार, 10,000 आहुति होता है 10,000 बार, क्यों बोला जाता है, कि सबके मन में बैठाने के लिए कि इस जगत का एक भी वस्तु मेरा नहीं है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण का है। तो इससे शुद्धिकरण होता है, तो शुद्धिकरण होने के साथ साथ में आसक्ति कम होता है और अहंकार भी कम होता है। दो चीजों के प्रति हमारा आसक्ति, दो चीजों को ये अज्ञान कहा गया है, अहम ममा इति अज्ञान। अहम मतलब क्या है, अहंकार, ममा मतलब क्या है, ममकार, मेरा, अहंकार और मेरा, अहंकार और ममकार, ये दो चीज है। इसलिए अहम ममा इति अज्ञान, तो ये दो चीजों की कम करना है, उसका और कोई रास्ता नहीं, यज्ञ ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए नंद महाराज भी कहते हैं, ये परंपरा से चलती आ रही है, इंद्र ने हमको दिया है तो इंद्र को वापस देना ये यज्ञ है। लेकिन ये कर्मकांड के हिसाब से इंद्र जो है सारे आहुतियों का केंद्र होते हैं, सभी लोग इंद्र को अर्पण करते हैं, लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार आहुति जो है भले ही देवताओं को भी अर्पण किया जाता है, लेकिन अंततः भगवान के पास ही जाता है। इसलिए यज्ञ करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। विज्ञातात् कर्मणोऽन्यत्र लोको एवं कर्मभिन्नः तदर्थं कर्म कौन्तेय। आजकल लोगों को कर्म करने में बहुत आसक्ति रहता है, बोलते मैं कर्म करूंगा कर्म करूंगा, लेकिन कर्म क्या है वो नहीं मालूम लोगों को, दे डोंट नो व्हाट इज कर्म। तदर्थं कर्म कौन्तेय, क्या है कर्म, आपकी कर्तव्यों को हमारी कर्तव्यों को जब भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे तभी उसको कर्म कहा जाता है, नहीं तो वो कर्म नहीं है, इट इज नॉट कर्म एट ऑल, वो क्रिया मात्र है। क्रिया में कर्म में बहुत अंतर है, क्रिया मतलब क्या है, जस्ट एक्टिविटी, आगे पीछे सोच भी ना, जो मन में आए कर दो, जो आया उसको भोगो, इसको क्रिया कहा गया, उसमें पाप लगता है। कर्म में पाप नहीं लगता, क्यों, क्योंकि कर्म जो है वो जब करते हैं तो किसके लिए करते, कृष्ण के लिए किया जाता है, जब कृष्ण के लिए किया जाता है उसमें शुद्धिकरण होता है, बिकम्स प्योर। किसके प्रति शुद्धिकरण होता है, अहंकार ममकार, ये दो चीज के प्रति शुद्धिकरण होता है। तो इधर इंद्र को पूजा करते हुए नंद महाराज कहते हैं, हम जो है गंगा को गंगा के पानी के द्वारा जिस प्रकार उनको गंगा को पूजा करते हैं, उसी प्रकार हे थात हे कृष्ण हम वही कार्य कर रहे हैं। तो ये जो यज्ञ की विधि है शास्त्रों में, ये बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन आजकल लोग यज्ञ की विधि को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब भगवान ने सृष्टि किया, सृष्टि के समय में देवताओं को सृष्टि किया और मनुष्यों को सृष्टि किया, सृष्टि करके उन्होंने एक और एक चीज को प्रदान किया हम दोनों के बीच में, वो क्या चीज है? यज्ञ। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान इस बात को स्पष्ट रूप में कहते हैं, सयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति ही अनेन प्रशस्वत्थम स इष्ट कामदृक। तो यज्ञ की सृष्टि जो है भगवान ने सृष्टि के समय किया था, क्योंकि भगवान ने कहा कि आप परस्परम भावयन्ते न, देवता लोग और प्रजा मानव मनुष्य परस्परम भावयन्ते न, दोनों के बीच में परस्पर भावना के साथ प्रेम की भावना से सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो यज्ञ की विधि जो है भगवान स्वयं ने सृष्टि किया है, इसको तिरस्कार करना नास्तिकता है। वेदम यज्ञमयम, वेद क्या है? वेद में पूरा यज्ञ का ही वर्णन है, यज्ञमयम वेदम। तो यज्ञ को त्याग करना नास्तिकता है। यज्ञ शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जो है इस यज्ञ का बात सुन के लोग सोचते हैं ये सब चीजें पुराना चीज है, पुराना चीज नहीं है। सृष्टि को सही तरीके से रखना है, इस जगत में सही तरीके से जीना है, यज्ञ के बिना हो ही नहीं सकता। भगवान का एक सिस्टम है, कोई भी कंप्यूटर बनाता है, कोई व्यक्ति कोई मोटरबाइक बनाता है, कोई चीज बनाता है, उसको चलाने का एक सिस्टम होता है। अगर उस सिस्टम के अनुसार चलाओगे नहीं तो निश्चित रूप में खराब होगा और उसका कोई उपयोग नहीं होगा, बल्कि उल्टा उससे दुख होगा, आपको परेशानी होगी। मान लीजिए कंप्यूटर है, आप उसको चलाने का एक मैनुअल होता है और उसके अनुसार नहीं चलाओगे तो वो कंप्यूटर आपका तकलीफ का समस्या कारण बनेगा। आप कितना भी उसको चलाने के लिए प्रयास करोगे उतना आपका दुख का कारण बनेगा। असित में संसार दुखाल शाश्वत हम कहते हैं, एक तरीके से बताया जाए भगवान के द्वारा किया गया सृष्टि दुखाल शाश्वत कैसे हो सकता है बताइए? नहीं हो सकता। तो बोले भगवीता है भगवान ने कहा वो किन लोगों की कला? कहा जो लोग उनकी नियम पालन नहीं करते, जो संसार के नियमों को पालन करते हैं, ये संसार दुखाल शाश्वत नहीं है। ये संसार एक साधन है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये भौतिक वस्तु ही साधन है भगवान की प्राप्ति का। कैसे? अरे आप बोलोगे भौतिक चीज को त्याग करना चाहिए तो दुखल शाश्वत है। भौतिक चीज को नहीं त्याग करना है, और भौतिक चीज के प्रति आसक्ति को त्याग करना है। जैसे एक प्रत्येक वस्तु है, समझ लीजिए एक वस्तु घर है, परिवार है। लोग सोचते हैं कि त्याग करने में आध्यात्मिकता है, नहीं, त्याग करने में आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि उसको भगवान की सेवा में लगाने में आध्यात्मिकता है, क्योंकि ये जानते हैं भगवान का है। त्याग करोगे उसमें ये भगवान का है करके उसका ज्ञान नहीं रहता हमको, तो इसकी वजह से वो वस्तु पास में रहने पर भी तकलीफ है, उसको छोड़ने पर भी तकलीफ है। इसलिए प्रभुपाद जी ये पूरा गहरा सिद्धांत को एक सरल एक हास्यात्मक एक शब्द में कहा, दिल्ली का लड्डू खाएगा तो भी तकलीफ, नहीं खाएगा तो भी तकलीफ। पता नहीं दिल्ली का लड्डू आपने खाया कि नहीं, मैंने बहुत बार खाया उसको सर्दी के मौसम में दिल्ली में लड्डू बनता है, उसके अंदर बहुत सारे काजू, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, घी, आधा तो घी से भरा हुआ रहता है, बहुत भारी रहता है। तो ये लड्डू अगर खा लिया कोई व्यक्ति, उसके बाद ठंडा पानी पी लिया, 3 दिन तक जैम अंदर, जैसे आप सीमेंट खा के उसके ऊपर पानी डालोगे क्या होगा? जैम हो जाएगा ना, ऐसा हो जाता है। तो खाएगा तो भी तकलीफ, अगर नहीं खाएगा तो नहीं खाया, नहीं खाया होता तो कितना अच्छा था। तो ये भोग करने वाले संसार को इसका समस्या यही है। जो संसार को त्याग करने वाले समस्या क्या है? ये संसार त्याग कर दिया होता तो कितना अच्छा था, मिथ्याचार उच्चते। इससे भोग में ही समस्या है, त्याग में ही समस्या है। इसलिए क्या करता है उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद कहता है कि आप केवल भोग मत करो, केवल त्याग मत करो, क्या करो? दोनों करो, भोग भी करो त्याग करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन त्याग मुञ्जीताम, दोनों साथ में मिलाया। देखिए कितना अद्भुत मंत्र है, भोग और त्याग का समन्वय किया ईशोपनिषद ने। वो समन्वय कब होगा? जब यज्ञ हो। भोग और त्याग की समन्वय जो है यज्ञ के द्वारा होता है। इसलिए यज्ञ की विधि अति अति महत्वपूर्ण है। आजकल भक्त लोग सोचते हैं यज्ञ में कोई जरूरत नहीं, जप करो बस, संकीर्तन यज्ञ है, बहुत अच्छी बात है। अगर केवल संकीर्तन यज्ञ करते जाए, उनको कुछ और चीज की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो लोग अगर कहीं भौतिक कार्य करना है, भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है, तो यज्ञ करना आवश्यक है। संकीर्तन यज्ञ सारे यज्ञों के साथ तो जुड़ा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है, लेकिन यज्ञ की विधि विधानों को जानना बहुत आवश्यक है। अब देखिए उस समय 7 साल का बालक है कृष्ण, और नंद महाराज एक वैश्य है। वो भी यही में कि वैश्यों में अलग अलग श्रेणियां होती है, वैश्य जाति में एकदम लोएस्ट जाति है, वो भी यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की सामग्रियों इकट्ठा कर रहे थे, इंद्र की यज्ञ करने के लिए तत्पर थे। लेकिन यज्ञ किसको करना चाहिए? यज्ञेश्वर कौन है? वास्तविकता में कृष्ण है, इसलिए वैष्णव विधि के द्वारा यज्ञ करना चाहिए, लेकिन यज्ञ तो करे कम से कम, यज्ञ करना चाहिए तो मालूम पड़े, क्योंकि अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में पाप की भागीदारी बनता है। देखिए कोई भी व्यक्ति पाप किए बिना संसार को भोग नहीं सकता, पाप किए बिना 1 रुपये भी कमा नहीं सकता। जो आपके घर में 1 रुपये आता है ना, पाप भी साथ में आ रहा है। आप कोई भी वस्तु को खरीदते हो और उसको भोगते हो, बाजार से कोई व्यक्ति खरीदने मात्र से उसके साथ पाप भी अंदर आता है घर में। ये सूक्ष्म विचार जो है आजकल की आधुनिक दुनिया में कोई सोचता नहीं, जानवरों के जैसे जी रहे हैं। पहले था ऐसा स्कूल में, अभी जब कोई बच्चा टिफिन लेके आता था, अकेले बैठ के खुद खाता था ना, बच्चे लोग बोलते तुमको पाप लगेगा। हम बचपन में ऐसी माहौल थी, लेकिन आजकल कोई पाप के बारे में बच्चा कोई बात ही नहीं करता है। मुझे याद है 10th स्टैंडर्ड तक की बात है, प्रायः 1 लड़का 2 लड़का नहीं, जितने भी लड़के हैं ना स्कूल में, कुछ मान लो कोई कुछ एक लड़का कुछ बोलता है, झूठ मत बोलो पाप लगेगा, ऐसी बातचीत होती थी। लेकिन मैं आजकल के बच्चों में देखता ही नहीं, किसी को पाप का डर ही नहीं है। मेरी संस्कृति ऐसा था कि प्राय सभी लोग जानते थे, देखो अकेले खाने से पाप लगेगा, झूठ बोलने से पाप लगेगा, ऐसे बातचीत होती थी। लेकिन आजकल वो बातचीत भी नहीं होता है, संस्कृति पूरा खत्म हो गया है, वैदिक सभ्यता खत्म हो गया है। इसलिए यज्ञ विधि के बारे में सबको प्रचार करना, सबको बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत करके कमा रहा हूं। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, कमाते क्यों नहीं है? आपको क्यों मिला है वो वस्तु? आपकी मेहनत की वजह से नहीं मिला है, वो आपको दिया गया है। हमारे पास कोई वस्तु है ना, घर है, संपत्ति है, वो आपको दिया गया है, आपने नहीं कमाया है। आजकल लोग बोलते मैं कमाया है। अच्छा, मेहनत तो पहले भी किया तो उस समय क्यों नहीं कमाया, अभी क्यों कमाई हुआ? उस समय भी होना चाहिए, आपकी मेहनत की वजह से कमाई होता है तो उस समय भी होना चाहिए, अभी क्यों नहीं हो रहा? अभी उस समय क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आपको दिया गया है। भले ही आपका पर कर्म का फल है, लेकिन कर्म का फल भी भगवान ने दिया है, इसलिए क्या करो, अर्पण करो, ऑफर इट टू कृष्ण। वैदिक सभ्यता के अनुसार नया कपड़ा भी आता था घर में, भगवान को अर्पण करके पहना जाता था। ये वैदिक सभ्यता, नया कपड़ा आया तुरंत भगवान के पास रखा, उसको हल्दी कुमकुम सब लगा के एक दिन उनके पास रखा जाता है, अगला दिन उसको निर्माल के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये वैदिक सभ्यता है। आजकल दुकान में जाकर उधर ही पहन लेते हैं। जब पहली बार आम आए घर में, बक्सियां ठाकुर जाके उसको सीधा जाके खा लिया। अब देखिए वैदिक सभ्यता कितनी कठोर थी, एक व्यक्ति की बात नहीं है, उस समय में सारे परिवार ऐसे ही थे, प्राय सारे परिवार ऐसे थे। बक्सियां ठाकुर छोटे से बालक के, 5 साल के बालक के खा लिया आम को, व्यक्ति ने ठाकुर ने इतना डांटा, भगवान को अर्पण के बिना तुम खाया? तो ये बात बक्सियां ठाकुर के मन में ऐसा रहा कि जीवन भर उन्हें आम नहीं खाया, होल लाइफ टाइम आम नहीं खाया। और ऐसा रूल लागू किया जाए, हम तो भूखे मर जाए, लेकिन लाइफ टाइम आम नहीं खाया। आम के साथ तो बहुत सारे पास्ता है बक्सियां ठाकुर का। ट्रेन में जा रहे थे भक्तिवत्सल सागर अपने शिष्यों के साथ, साथ में और मायावादी लोग थे। चर्चा हुआ, मायावाद को बहुत खंडन करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी जिद पकड़े थे। तो भक्तिवत्सल ठाकुर ने कहा, निकालो, हमारे पास आम गिफ्ट में मिला था ना, निकालो, सब सड़ाओ आम निकालो उधर से और सबको दो खाने के लिए। तो उनके शिष्यों ने निकाल के सड़ा हुआ आम सब मायावादियों को खिलाया दिया। सड़ा हुआ देता है ये नहीं, बंगाल में बंगाली भाषा में सब लोग हमको अपमान किया सड़ा आम देके। तुमने कहा आपके सिद्धांत के अनुसार तो यही है ना, सड़ा हुआ आम अच्छा आम दोनों एक ही है, अद्वैत है, अद्वैतवाद है, सर्वम कलुषितं ब्रह्मन्, अच्छा आम भी आम है, सड़ा हुआ आम भी आम है, तो खा लो उसको। तो सब शांत हो गए। तो जो भी है, बाद में मेन पॉइंट ये है कि इस श्लोक में जब पंत महाराज अपने कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, वो ताता कृष्ण की कृपा से या इंद्र की कृपा से आप प्राप्त हुए हो, इसलिए इंद्र के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं वो तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे प्रति प्रेम की वजह से कर रहे हैं, अहंकार मत करो, इंद्र के प्रति यज्ञ को बंद मत करो। जैसे इंद्र के द्वारा हमको जो प्राप्त हुआ है उन्हीं चीजों को उनको अर्पण करने से हम इंद्र को प्रसन्न करते हैं, जिसके द्वारा अगले साल बारिश अच्छी तरीके से होगी और हमारा जीवन अच्छा रहेगा। इस उद्देश्य से नंद महाराज श्लोक को उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस?